जब किसी के हृदय में परमात्मा की ज्योति उतरती है, जब कोई बुद्ध पृथ्वी पर चलता है तो आकाश पृथ्वी पर चलता है। उसके पास तो केवल हिम्मतवर लोग इकट्ठे होते हैं। हिम्मतवर, ऐसे हिम्मतवर जैसे परवाने जो ज्योति में डूबकर जलकर तुरोहित हो जाने को तैयार। सच्चा धार्मिक व्यक्ति तो दीवाना होता है, परवाना होता है, क्योंकि इससे बड़ी और दीवानगी क्या होगी, अपने को मिटाना, अपने अहंकार को गलाना। परवाना तो पागल होगा ही, तभी तो ज्योति पर निछावर हो सकेगा।
नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ओशो संबोधि दिवस सेलिब्रेशन में। 21 मार्च को ओशो मित्र इसे एनलाइटमेंट डे संबोधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च 1953 21 वर्ष की आयु में ओशो संबोधि परम जागरण को उपलब्ध हुए।
संबोधि के संबंध में ओशो कहते हैं, अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं हूं। अस्तित्व ने अपने समस्त द्वार मेरे लिए खोल दिए हैं।
उन दिनों वे जबलपुर के एक कॉलेज में दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे। संबोधि घटित होने के पश्चात भी उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी और सन 1957 में सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने 9 सालों तक दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक पद पर कार्य किया। वे पूरे भारत में भी भ्रमण करते रहे, सभाएं करते रहे। प्राय 60,000 से 70,000 की संख्या में श्रोता उनको सुनने आते थे। उनकी वाणी में और उनकी उपस्थिति में वह जादू था, वह सुगंध थी जो किसी पार के लोक से आती थी। सन 1966 ओशो अपने पद से त्यागपत्र देकर इस परम जागरण को पूरी मानवता के साथ बांटने निकल पड़े।
give to you. All of my love,
all of my love,
I give to you. All of my love.
आज का प्रवचन, ज्यों था त्यों ठहराया, प्रवचन नंबर 7 से लिया गया है। आइए भीगते हैं ओशो की अमृतवाणी में।
शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं गच्छामि
बुद्धं शरणं
गच्छामि
पहला प्रश्न, भगवान श्रीमद् भागवत में यह श्लोक है, यश मूढ़तमो लोके यश बुद्धे परम गता तावुभव सुख मेघते क्लिश्यत्ते अंतरिंतो जना। संसार में जो अत्यंत मूढ़ है और जो परम ज्ञानी है, वे दोनों सुख में रहते हैं, परंतु जो दोनों के बीच की स्थिति में है, वह क्लेश को प्राप्त होता है। क्या ऐसा ही है भगवान? आनंद मैत्रेय निश्चय ही ऐसा ही है। मूढ़ का अर्थ है सोया हुआ, जिसे होश नहीं, जी रहा है लेकिन पता नहीं क्यों, चलता भी है, उठता भी है, बैठता भी है, यंत्रवत। जिंदगी कैसे गुजर जाती है, जन्म कब मौत में बदल जाता है, दिन कब रात में ढल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। जो इतना बेहोश है उसे दुख का बोध नहीं हो सकता। बेहोशी में दुख का बोध कहां, झेलता है दुख पर बोध नहीं, इसलिए मानता है कि सुखी हूं। करीब करीब प्रत्येक व्यक्ति इसी भ्रांति में है कि सब ठीक है। जिससे पूछो कैसे हो, वही कहता है ठीक हूं, और ठीक कुछ भी नहीं, सब गैर ठीक है। जिससे पूछो वही कहता है मजा है, आनंद है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। शायद उसे यह भी बोध नहीं कि वह क्या कह रहा है। न सुनने वाले को पड़ी है, न बोलने वाले को पड़ी है सोचने की। कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है, न कहने वाले को प्रयोजन है क्यों कह रहा है, न सुनने वाले को चिंता है कि क्या कहा जा रहा है। ऐसी बेहोशी में सुख की भ्रांति होती। पशु ऐसी ही बेहोशी में जीते हैं और 99% मनुष्य भी। पशु शब्द बड़ा प्यारा है। पशु का अर्थ है जो पास में बंधा हो। पशु का अर्थ सिर्फ जानवर नहीं, पशु का बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है बंधा हुआ, मोह के पास में बंधा हुआ, मूर्छा के बंधनों में जकड़ा हुआ, आसक्तियों में खोया हुआ, सपनों में। पशुओं को तुमने दुखी ना देखा होगा, रोते ना देखा होगा, पीड़ित ना देखा होगा, इसलिए तो पशुओं में कोई बुद्ध नहीं होता। जब पीड़ा का ही पता ना चलेगा तो पीड़ा से मुक्त होने की बात ही कहां उठती, प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्यों में कभी कोई एकाध व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, कभी उंगलियों पर गिने जा सकते हैं ऐसे लोग, करोड़ों में कोई एक। कौन बुद्धत्व को उपलब्ध होता है, वही जिसे जीवन की पीड़ा ठीक ठीक दिखाई पड़ती, जिसे इतना होश आ जाता है कि जीवन दुख ही दुख है। आशा है सुख की मगर मिलता कहां, दोनों दौड़ते हैं पाने के लिए मगर पहुंचता कौन, हाथ खाली के खाली रह जाते, धन भी इकट्ठा हो जाता है, पद पर भी बैठ जाते मगर भीतर की रिक्तता नहीं भरती सो नहीं भरती, भीतर का दिया नहीं जलता सो नहीं जलता। धन से जलेगा भी कैसे, पद से भीतर रोशनी भी कैसे होगी, कोई संबंध नहीं दोनों का। धन बाहर है, भीतर निर्धनता है, बाहर के धन से भीतर की निर्धनता कैसे मिटे। महल में रहो कि झोपड़े में, रहोगे तो तुम ही। तुम अगर झोपड़े में दुखी हो तो महल में भी दुखी रहोगे, तुम अगर झोपड़े में सोए हो तो महल में सोओगे। लेकिन झोपड़े में जो है वो भी सोच रहा है सुखी हूं, राह के किनारे जो भिकमंगा बैठा है, लंगड़ा लूला अंधा बहरा, कुष्ठ से गला जा रहा है, हाथ पैर गिर रहे हैं टूट टूट के, वो भी जिए जा रहा है। पता नहीं किस आशा में, किस भ्रांति में, कल सब ठीक हो जाएगा। कल कभी आता है, जो नहीं आता उसी का नाम कल है। तुम किसी भिकमंगे से भी कहो कि किस लिए जी रहे हो तो नाराज हो जाएगा, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा कोई कारण जीने का। लेकिन जीवेशना ऐसी है कि हर हाल आदमी जिए जाता है। गहन अकाल के दिनों में माताएं अपने बच्चों को काट के खा गईं, बापों ने अपनी बेटियां बेच दी, टूट गए सब नाते, छूट गए सब रिश्ते, अपने जीवन की आकांक्षा इतनी कि आदमी कुछ भी कर सकता है। जिसके लिए जीते थे उसी को मार भी सकता है। ऐसी अवस्था में पता नहीं चलता, कांटों में बिंधे पड़े रहते हैं और फूलों के सपने देखते रहते हैं। यह श्लोक ठीक कहता है कि जो संसार में अत्यंत मूढ़ है वे सुखी है। सुखी इसलिए कि उनकी मूढ़ता इतनी सघन है कि उन्हें मूढ़ता का भी पता नहीं। मूढ़ता का पता जिसे चल गया वो तो मूढ़ ना रहा। मूढ़ सुखी अनुभव करता अपने को, इसलिए कि उसे दुख का बोध नहीं होता। इसलिए तो जब किसी का ऑपरेशन करते हैं तो पहले उसे बेहोश कर देते, बेहोश हो गया तो फिर दुख का पता नहीं चलता। फिर उसके हाथ काट दो, पैर काटो, अपेंडिक्स निकाल लो, जो करना हो करो, उसे कुछ पता नहीं। होश में किसी के अपेंडिक्स निकालोगे तो आसान नहीं मामला, डॉक्टर की गर्दन दबा देगा, लड़ने को मरने को मारने को राजी हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है, मेरा पेट काट रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, भागने लगेगा। पहले उसे बेहोश कर देते, और यही प्रक्रिया मृत्यु की है। मरने के पहले अधिकतम लोग बेहोश हो जाते क्षण भर पहले, क्योंकि मृत्यु तो बड़े से बड़ा ऑपरेशन, आत्मा शरीर से अलग की जाएगी। अपेंडिक्स क्या है? आत्मा का शरीर से अलग होना, इससे बड़ी और पीड़ा की कोई बात क्या होगी? 70-80-90 साल दोनों का संग साथ रहा, जुड़ गए, एक दूसरे में मिल गए, तादात्म्य हो गया, उस सारे तादात्म्य को छिन्न भिन्न करना है तो प्रकृति बेहोश कर देती, सिर्फ कुछ बुद्धों को छोड़कर, क्योंकि उनको बेहोश नहीं किया जा सकता। वो जागे ही जीते हैं, जागे ही सोते, जागे ही मरते, इसलिए मरते ही नहीं, क्योंकि जाग के वो देखते रहते हैं शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूं। मुस्कुराते रहते हैं, देखते रहते हैं कि शरीर छूट रहा है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मन विदा हो रहा है लेकिन मैं मन नहीं हूं। वस्तुतः तो वे बहुत पहले ही शरीर और मन से मुक्त हो चुके, मौत आई उसके पहले मर चुके, उसके पहले उन्होंने शाश्वत जीवन को जान लिया। बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके शिष्य रोने लगे। बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, ना समझो, मुझे मरे तो लंबा अरसा हो गया। मैं तो 42 साल पहले उस रात मर गया जिस दिन बुद्ध हुआ, अब क्या रो रहे हो 42 साल बाद? आज कुछ नया नहीं हो रहा है, ये तो घटना घट चुकी 42 साल पहले उस रात पूर्णिमा की। मैंने देख लिया कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बात खत्म हो गई, मौत तो उसी दिन हो गई। रो मत, रोने का कुछ भी नहीं, क्योंकि जो है वो रहेगा और जो नहीं है वो नहीं ही है। वो जाता है तो जाने दो, सपने ही टूटते हैं, सत्य नहीं टूटते। तो जो परम ज्ञान को उपलब्ध है वह भी सुखी, महासुख बुद्ध ने उसे कहा, भेद करने को। अज्ञानी सुखी होता, धन मिल जाता है, लॉटरी मिल जाती, सुखी हो जाता है, पद मिल जाता है, सुखी हो जाता है, खिलौनों में, माटी के खिलौनों में भरम जाता है। एक भ्रम टूटता नहीं, दूसरे भ्रम में उलझ जाता, नए नए भ्रम खड़े करता रहता है, झमेले में लगा रहता है। वह कर इसमें इतना उलझा होता है, इतना व्यस्त कि पता ही नहीं चलता कि कब जिंदगी आई, कब जिंदगी गुजर गई, कब सुबह हुई, कब सांझ हो गई, कब सूरज उगा, कब डूब गया। बचपन खिलौनों में निकल जाता है, जवानी भी खिलौनों में निकल जाती, बदल जाते खिलौने। बच्चों के खिलौने छोटे स्वभावतः, जवानों के खिलौने जरा बड़े, मगर आश्चर्य तो यह कि बुढ़ापा भी खिलौनों में ही निकलता है। कम से कम बुढ़ापे में आते आते तो जाग जाना चाहिए, मरने के पहले तो जाग जाना चाहिए, मरने के पहले तो सारे व्यर्थ के जाल जंजाल से छुटकारा कर लेना चाहिए। मरने के पहले जीवन क्या है इसकी पहचान हो जानी चाहिए, जिसको हो जाती उसे महासुख। ये श्लोक कीमती है, ये कहता है, यश मूढ़ तमो लोके यश बुद्धे परम गता। वे जो मूढ़ हैं वे भी सुखी हैं नकारात्मक अर्थों में, क्योंकि उनको दुख का पता नहीं। और वे जो बुद्ध पुरुष हैं, बुद्ध जन हैं, जो परम गति को उपलब्ध हुए, वे भी सुखी हैं विधायक अर्थों में, उन्हें पता है कि सुख क्या है, वे महासुखी। भेद को समझ लेना, दोनों का सुख अलग अलग है। मूल का सुख वैसा ही है जैसे बेहोश आदमी का ऑपरेशन हो रहा है और उसे पता नहीं। ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति के लिए कोई दुख नहीं, क्योंकि दुख शरीर और मन के ही होते, आत्मा का कोई दुख नहीं होता, आत्मा का स्वभाव आनंद है। हमने शरीर के साथ अपने को एक मान रखा है तो हम दुखी, मन के साथ अपने को जोड़ रखा है तो हम दुखी। मन यानी माया, मन यानी मोह, मन यानी सारा संसार, ये सारा विस्तार। मन और शरीर से अलग जिसने अपने को जान लिया वो परम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, फिर वहां कोई दुख नहीं, फिर वहां महासुख है, परम शांति, आनंद ही आनंद, अमृत ही अमृत। और यह बात भी सच है कि इन दोनों के बीच में जो है वो दुखी, मूढ़ उसे पता नहीं, बेहोश है, प्रबुद्ध उसे पता है, परिपूर्ण होश है। इन दोनों के मध्य में जो है वो दुखी, वो बड़े झमेले में, न यहां का न वहां का, न घर का न घाट का, धोबी का गधा है। इधर शरीर खींचता है, उधर आत्मा पुकारती, इधर बाहर की दुनिया आकर्षित करती, उधर भीतर का लोग निमंत्रण देता है। यहां धन खींचता है, वहां ध्यान पुकारता है। ऐचा तानी, कोई टांग खींच रहा, कोई हाथ खींच रहा, जरा जरा सा होश भी है मगर धुंधला धुंधला। इतना नहीं कि महासुख दिखाई पड़ जाए, मगर इतना होश है कि दुख दिखाई पड़ता है। इतनी रोशनी नहीं कि अंधेरा मिट जाए, मगर इतनी रोशनी है कि अंधेरा दिखाई पड़ता है। जैसे सुबह सुबह भोर में अभी सूरज नहीं निकला, अभी रात के आखिरी तारे नहीं डूबे, कुछ कुछ हल्की सी रोशनी है और गहन अंधकार भी साथ साथ। मध्य में जो है वो संध्या काल में उसकी बड़ी विडंबना है, न यहां का न वहां का, वो त्रिशंकु की भांति लटक जाता है, न इस लोक का न परलोक का। कुछ लोगों की ये गति है, खासकर उन लोगों की जिनके जीवन में थोड़ी सी धार्मिकता है, जिनके जीवन में थोड़ा सा प्रार्थना का स्वर सुनाई पड़ा है, जिनके जीवन में क्रांति की थोड़ी सी चिंगारी पड़ी, वो बड़े दुखी हो जाते। और वो तब तक दुखी रहेंगे जब तक वो परम सत्य को न पालें। बुद्ध बहुत दुखी हो गए थे, तभी तो राजमहल छोड़ा। और जिन घटनाओं को देख के दुखी हुए थे, उन्हीं घटनाओं को तुम रोज देखते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होता। चार घटनाओं का उल्लेख है। बुद्ध जब पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने कहा कि सम्राट, हम बड़े संकोच से भरे, आपके बेटे का भविष्य बड़ा अनिश्चित है। या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होगा, अगर रुक रहा संसार में तो ये सारे जगत का विजेता होगा, लेकिन पक्का नहीं कह सकते। एक संभावना ये भी है कि सब त्याग कर सन्यासी होगा, तब ये बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। या तो चक्रवर्ती सम्राट या बुद्ध। सिर्फ एक युवक ज्योतिषी भी मौजूद था, कोदन्ना उसका नाम था, वो भर चुप रहा। सम्राट ने पूछा कि तुम कुछ नहीं कहते, उसने एक अंगुली उठाई। सम्राट ने कहा इशारे मत करो, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो एक उंगली उठा के। कोदन्ना ने कहा कि मैं सुनिश्चित रूप से कहता हूं कि यह व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। सम्राट को बहुत धक्का लगा, एक ही बेटा था, वो भी बुढ़ापे में पैदा हुआ था, ये संन्यास्त हो जाएगा, फिर मेरे साम्राज्य का क्या होगा, इसे कैसे रोका जाए कि ये संन्यास्त ना हो। हर मां बाप बच्चों को रोकते कहीं संन्यास्त ना हो जाए। बड़ी हैरानी की दुनिया है। और मजा ये कि अगर किसी और का बेटा सन्यासी हो जाए तो यही मां बाप उसके चरण छूने जाते। इनका खुद का बेटा सन्यासी होने लगे तो इनको अड़चन आती। अड़चन इसलिए आती कि इनके न्यस्त स्वार्थ को धक्का लगता है। अड़चन इसलिए आती कि बेटा हमसे आगे जा रहा है, इस अहंकार को भी पीड़ा होती। हम जो ना कर पाए वो बेटा कर रहा है कि बेटी कर रही। और फिर बुद्ध के पिता ने जो बड़ा विस्तार कर रखा था धन का, साम्राज्य का, उसका क्या होगा, जीवन उसी में गंवाया था। बड़ी आशा थी इस बेटे की कि बेटा मिल जाएगा, तो संभालने वाला कोई होगा, हम तो न रहेंगे लेकिन अपना कोई खून का हिस्सा संभालेगा। क्या क्या मोह है दुनिया में, हम न होंगे तो कम से कम हमारा बेटा संभालेगा। खुद के बेटे नहीं होते लोग दूसरों के बेटे गोद ले लेते हैं और भ्रांतियां बना लेते हैं कि अपना है, कोई अपना संभालेगा तो भी भरोसा है कि चलो हमारा श्रम व्यर्थ नहीं गया। श्रम तो व्यर्थ ही गया, जब तुम ही चले गए तो तुम्हारे श्रम का क्या मूल्य। बुद्ध के पिता बड़े चिंतित हुए, पूछने लगे कि कोई रास्ता बताओ कैसे इसको रोके। तो उन ज्योतिषियों ने कहा अगर इसे रोकना हो तो चार चीजों का पता मत चलने देना, बीमारी होती है ये पता मत चलने देना, क्योंकि बीमारी में से दुख होगा, दुख होगा तो फिर बचना मुश्किल होगा। बुढ़ापा आता है ये पता मत चलने देना, क्योंकि बुढ़ापे का अगर इसको ख्याल आ जाएगा तो मौत ज्यादा दूर नहीं है फिर, और मौत होती ये इसे पता मत चलने देना। और चौथी बात की संन्यास की भी संभावना है, ये से पता मत चलने देना। बस ये चार बातों से बचाए रखना और इसे पिलाओ शराब और रंगरेलियां मनाने दो। सम्राट हो तुम, सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दो, उन्हीं में भूला रहे भटका रहे, संगीत चले, नाच चले, शराब चले, दौर पे दौर चले, इसको बेहोश रखो। अगर इसे बेहोश रखने में समर्थ हो गए तो ये चक्रवर्ती सम्राट हो जाए। सम्राट ने कहा फिर ठीक है। उसने बुद्ध के लिए अलग अलग ऋतुओं के लिए अलग अलग महल बनवाए, गर्मी के लिए अलग महल, ऐसे स्थान में, ऐसे मौसम में, ऐसे वातावरण में जहां सब ठंडा था, शीतल था, उसे गर्मी का पता ना चले, सर्दी में और जगह जहां सब गर्म था उसे सर्दी का पता ना चले, वर्षा में ऐसी जगह जहां थोड़ी बूंदाबांदी हो, वर्षा का मजा भी हो लेकिन वर्षा की पीड़ा ना हो। सम्राट ने सारी सुंदर स्त्रियां, जितनी सुंदर युवतियां राज्य में मिल सकती थी सबको उठा लिया, वो उसके हाथ की बात थी। बुद्ध को सिर्फ लड़कियों से घेर दिया, खिलौने ही खिलौने दे दिए और सारी सुविधाएं जुटा दी। श्रेष्ठतम चिकित्सक बुद्ध के पीछे लगा दिए कि बीमारी आने के पहले ही इलाज करे, बीमारी आए फिर इलाज नहीं, बीमारी आने के पहले इलाज। बुद्ध को पता ही न चले कि बीमारी आने वाली थी और किसी बूढ़े को बुद्ध के महलों में जाने की आज्ञा न थी। यहां तक कि कोई सूखा हुआ पत्ता बुद्ध के बगीचे में नहीं टिकने दिया जाता था। सूखे पत्ते को देख के शायद उन्हें याद आ जाए कि कभी हमें भी तो नहीं सूख जाना पड़ेगा, आज हरे हैं कल कहीं सूख के वृक्ष से गिर तो ना जाएंगे। कुमलाए हुए फूल रात में अलग कर देते थे, बुद्ध के बगीचे में माली रात भर काम करते थे, कुमलाए हुए फूल, सूखे पत्ते, पीले पड़ गए पत्ते सब अलग कर दिए जाते थे। बुद्ध को ऐसे धोखे में रखा गया, लेकिन कब तक धोखे में रखोगे, जिंदगी से कैसे किसी को छिपाया जा सकता है। एक महोत्सव में, युवक महोत्सव में बुद्ध भाग लेने जा रहे थे, उसका उद्घाटन करने, राजकुमार ही उसका उद्घाटन करता था। रास्ते पर डुंडियां पीट दी गई थी कि कोई बूढ़ा ना निकले, कोई बीमार ना निकले, कोई मुर्दे की लाश न गुजरे, कोई सन्यासी ना निकले। मगर दुनिया बड़ी है, किसी बहरे ने सुना ही नहीं कि डुंडी पीटी, किसी बीमार को पता ही ना चला कि डुंडी पीटी। बड़ी राजधानी थी, और जब बुद्ध का रथ जा रहा था राजधानी में से, तो उन्होंने देखा एक आदमी को कमर झुक गई है, रुग्ण खांस रहा, खकार रहा। पूछा कि क्या हो गया इसको? सारथी ने कहा, मुझे आज्ञा नहीं है कि मैं आपको इस तरह की बातों के संबंध में कहूं। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि बोलो क्या हो गया है इसे। बुद्ध को इंकार भी नहीं किया जा सकता, राजकुमार है। तो उसने कहा, मजबूरी है, लेकिन आपके पिता की आज्ञा नहीं। बुद्ध ने कहा, जब मैं तुमसे कहता हूं जवाब दो, अन्यथा नौकरी से तुम अलग किए जाते हो। उस सारथी ने कहा, मालिक नाराज ना हो, ये आदमी बीमार है, इसको क्षय रोग हो गया है, ये तपेदिक से बीमार है, ये खांस रहा है, खकार रहा है। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूं? इसको कहते हैं प्रतिभा, इसको कहते हैं बुद्धिमत्ता, इसको कहते हैं प्रखर तेजस्वीता, मेधा। उस आदमी का प्रश्न तत्क्षण अपने पर लागू हो गया, क्या मैं कभी बीमार हो सकता हूं? उस साथी ने कहा कि मैं क्या कहूं आपसे, लेकिन देह है तो बीमारी है, देह तो बीमारियों का घर है, इसमें सब बीमारियां छुपी हैं, आज नहीं कल। अभी आप जवान हैं, अभी सब स्वस्थ है, सब सुंदर है, मगर कब टूट जाएगा स्वास्थ्य कहा नहीं जा सकता, टूट ही जाता है। मगर ख्याल रखें, अपने पिता को मत कहना कि मैंने ये बातें आपसे कही, नहीं तो मेरा अस्तित्व खतरे में। बुद्ध ने कहा, तुम चिंता मत करो। और तभी एक बूढ़ा आदमी गुजरा, बहुत जरा जीर्ण, और बुद्ध ने पूछा, इसे क्या हो गया, इसे कौन सी बीमारी? सारथी ने कहा, ऐसे कोई बीमारी नहीं, ये बुढ़ापा है, ये सबको होता है, ये बीमारी नहीं है, ये सहज जीवन का अंतिम चरण है। बुद्ध ने कहा, क्या ऐसी ही झुर्रियां मेरे चेहरे पर पड़ जाएंगी, ऐसी ही सिकन, ऐसा ही कमजोर मैं हो जाऊंगा, आंखें मेरी ऐसी ही धुंधली हो जाएंगी, ऐसा ही बहरा मैं हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, मजबूरी है, मगर प्रत्येक को एक दिन इसी तरह हो जाना पड़ता है। सब चीजें आखिर थक जाती, इंद्रियां थक जाती, टूटने लगती, बिखरने लगती, बुढ़ापे से कौन बच सका है? और तभी एक मुर्दे की लाश निकली, और बुद्ध ने पूछा, अब इसे क्या हो गया, ये किस आदमी को बांध कर लिए जा रहे हैं? सारथी ने कहा, ये बुढ़ापे के बाद की घटना, ये आदमी मर गया। और तब उसी लाश के पीछे एक सन्यासी गैरिक वस्त्रों में। बुद्ध ने कहा, ये आदमी गैरिक वस्त्र क्यों पहने हुए, इसके हाथ में भिक्षा का पात्र क्यों है? इस आदमी की ये शैली क्या है? तो पता चला कि ये सन्यासी, इसने सारे संसार को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? इसलिए कि जीवन में दुख है, बीमारी है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। ये आदमी अमृत की तलाश में चला है। बुद्ध ने कहा, लौटा लो रथ को, वापस लौटा लो, मैं बीमार हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, मैं मर गया, यूं समझो मुझे भी सत्य की तलाश करनी होगी। वो महोत्सव में भाग लेने नहीं गए, लौट आए, और उसी रात उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये चार सत्य तुम्हें रोज दिखाई पड़ते, बीमार भी दिखाई पड़ता, तुम भी बीमार पड़ते हो, बूढ़ा भी दिखाई पड़ता, तुम भी बूढ़े हो रहे हो, रोज हो रहे हो, प्रतिपल हो रहे हो। जिसको तुम जन्मदिन कहते हो वो जन्मदिन थोड़ी है, मौत और करीब आ गई, उसको जन्मदिन कह रहे हो। लोग जन्मदिन मनाते लेकिन मौत करीब आ रही, एक साल और बीत गया, एक बरस और बीत गया, जिंदगी और छोटी हो गई। तुम सोचते हो जिंदगी बड़ी हो रही, जिंदगी छोटी हो रही। जन्मने के बाद आदमी मरता ही जाता है, पहले ही क्षण से मरना शुरू हो जाता है। ये मरने की प्रक्रिया 70-80 साल लेगी, ये और बात। धीरे धीरे क्रमशः आदमी मरता जाता है, लेकिन तुम देख के भी कहां देखते हो, तुम बेहोश, इसलिए तुम सुखी हो। बुद्ध बहुत दुखी हो गए, मध्य में आ गए, मूढ़ ना रहे। अभी परम ज्ञान नहीं हुआ है, मगर बीच की हालत आ गई, बहुत दुखी हो गए, तलाश में निकल गए। जब आदमी बहुत दुखी होता है तभी तलाश में निकलता है, मगर दुख को अनुभव करने के लिए भी बुद्धिमत्ता चाहिए। धन्यभागी हैं वे जो दुख को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने दुख को अनुभव किया उन्होंने फिर दुख से मुक्त होने की चेष्टा भी की, करनी ही पड़ेगी। बुद्ध 6 वर्ष अथक तपश्चर्या किए, ध्यान किए, और एक दिन परम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, तब महासुख के झरने फूटे, तब अमृत रस बरसा, तब जीवन का राज खुला, रहस्य खुला, तब भीतर का सूरज उगा। ध्यान मिला तो भीतर का धन मिला, समाधि मिली तो सब समस्याओं का समाधान मिला, फिर कोई दुख ना रहा, फिर कोई संताप ना रहा। यह सूत्र बिल्कुल ठीक है, यश मूढ़ तमो लोके यश बुद्धे परम गता। बड़ा विरोधाभासी सूत्र है कि मूढ़ों की गति और परम बुद्धों की गति एक अर्थ में समान है, मूढ़ भी सुखी बुद्ध भी सुखी, मगर उनका सुख बड़ा अलग अलग। मूढ़ बेहोशी के कारण सुखी, बुद्ध होश के कारण सुखी। जमीन आसमान का भेद है। तावु भव सुख मेघेते क्लश्यंत अंतरितो जना। लेकिन जो बीच में मध्य में उनको बड़ा क्लेश है, लेकिन मध्य में आना ही होगा, पशुता छोड़नी होगी, मनुष्य होना होगा, मनुष्य दुखी होगा, मनुष्य मध्य में होगा, लेकिन उस दुख से गुजरे बिना कोई बुद्धत्व तक नहीं जा सकता। वो कीमत चुकानी पड़ती, जो उस कीमत को चुकाने से बचेगा वो पशुता के जगत में ही, मूढ़ता के जगत में ही उलझा रह जाता है। और तुम यही कर रहे हो, अधिकतम लोग यही कर रहे हैं, किसी तरह अपने को भुलाए रखो, उलझाए रखो, जाल बुनते रहो उलझाओ के, और कल पर टालते रहो मनुष्य होने की संभावना को, कल मौत आएगी। तुम बहुत बार जन्मे हो और बहुत बार ऐसे ही मर गए, अवसर तुमने कितना गमाया है हिसाब लगाना मुश्किल है। अब और ना गमाओ, ये कीमत चुका दो, ये दुख से थोड़ा गुजरना पड़ेगा, और जितने जल्दी चुका दो उतना बेहतर है। ये दुख ही तपश्चर्या है, यह दुख ही साधना है। इस दुख की सीढ़ी से चढ़ के ही कोई परम सुख को उपलब्ध हुआ है, और कोई उपाय नहीं, बच के नहीं जा सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि देवता भी देवलोक से निर्वाण को नहीं पा सकते, पहले उन्हें मनुष्य होना पड़ेगा। मनुष्य हुए बिना कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य चौरसता है। देवता सुखी है, शराब पी रहे हैं, अप्सराओं को नचा रहे हैं, और उसी तब उपद्रव में लगे जिसमें तुम लगे हो, कुछ फर्क नहीं, थोड़ा बड़े पैमाने पर है उनका, जरा उनकी उम्र लंबी होगी, उनकी देह सुंदर होगी, मगर सब यही जाल है जो तुम्हारा है, यही ईर्ष्या, यही वैमनस। तुमने कहानियां तो पढ़ी हैं कि इंद्र का सिंहासन बड़े जल्दी डोल जाता, कोई तपश्चर्या करता इंद्र का सिंहासन डोला, घबराहट चढ़ती कि यह आदमी कहीं इंद्र ना हो जाए। वही राजनीति, वही दांव पेंच, और इंद्र करते क्या है, भेज देते हैं अप्सराओं को, मेनका को, उर्वशी को कि भ्रष्ट करो इस तपस्वी को, ये भ्रष्ट हो जाए तो मैं निश्चिंत सोऊं। मगर क्या खाक निश्चिंत सो पाओगे, इतनी बड़ी पृथ्वी है, कोई ना कोई तपस्या करेगा, कोई ना कोई ध्यान करेगा, नींद कहां, देवता भी दुखी हैं उतने ही जितने तुम, लेकिन ना तुम्हें पता है ना उन्हें पता है, वे भी बेहोश है। इसलिए शास्त्र ठीक कहते हैं कि मनुष्य हुए बिना मनुष्य के चौराहे से तो गुजरना ही होगा, ये चौराहा है, यहां से पशु की तरफ रास्ता जाता है, यहां से मनुष्य की तरफ रास्ता जाता है, यहां से देवत्व की तरफ रास्ता जाता है, और यहां से बुद्धत्व की तरफ भी रास्ता जाता है। मनुष्य चौराहा है, चारों रास्ते यहां मिलते हैं। अगर तुम समझो तो जीवन एक परम सौभाग्य है। अगर तुम जागो तो मनुष्य होने से बुद्धत्व होने की तरफ मार्ग जा रहा है, तुम उसे चुन सकते हो। लेकिन लोग शराब पिएंगे, अगर दुखी होंगे तो शराब पिएंगे, क्यों, आदमी शराब पीता है दुखी होता है तो भुलाने के लिए। पशु हो जाएगा शराब पी के, जो समझदार है वो ध्यान करता है, वो ध्यान की शराब पीता है, वो समाधि की तरफ बढ़ता है, वो कहता है ऐसा भुलाने से क्या होगा, भुलाने से दुख मिटता तो नहीं, फिर कल सुबह होश आएगा, फिर दुख वहीं के वहीं पाओगे और बड़ा हो जाएगा, रात भर में दुख भी बड़ा हो रहा है, जब तुम सो रहे हो तब दुख भी बड़ा हो रहा है, सुबह चिंताओं के जाल और खड़े हो जाएंगे। कल जब तुमने शराब पी थी, जितनी चिंताएं थी सुबह पाओगे और ज्यादा हो गई, क्योंकि शराब पी के भी तुम कुछ उपद्रव करोगे ना, किसी को गाली दोगे, किसी को मारोगे, किसी के घर में घुस जाओगे, किसी की स्त्री को पकड़ लोगे, कुछ ना कुछ उपद्रव करोगे, सुबह तुम पाओगे और झंझटें हो गई, हो सकता है सुबह हवालात में पाओ अपने को कि किसी नाली में पड़ा हुआ पाओ, कुत्ता मुंह चाट रहा हो कि जीवन जल छिड़क रहा हो, और झंझटें हो गई, सुबह घर पहुंचोगे तो पत्नी खड़ी मूसल लिए हुए, इससे निपटो। दफ्तर जाओगे वहां झंझटें खड़ी होंगी, हजार भूल चुके होंगे, क्योंकि नशा सरकते सरकते उतरता है, थोड़ी सी छाया बनी ही रहती, कुछ का कुछ हो जाएगा, कुछ का कुछ बोल जाओगे, कुछ का कुछ कर गुजरोगे, और चिंताएं बढ़ जाएंगी और दुख बढ़ जाएंगे। कल मुश्किल थी और नशे में हो सकता है कि जेबी कट जाए, बीमारियां थी और बीमार हो जाओगे, जिंदगी वैसे ही उलझी हुई थी, शराब से सुलझ नहीं जाएगी, गालियां दे दोगे, झगड़े कर लोगे, कुट जाओगे, पिट जाओगे, किसी को पीट दोगे, छुरा मार दोगे, पता नहीं बेहोशी में क्या कर गुजरोगे। इतना तय है कि चिंताएं कम नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी, संताप गहन हो जाएगा, फिर और शराब पीना इसको भुलाने के लिए। अब तुम पड़े दुष्ट चक्र में, एक ही उपाय है, जागो, होश से भरो, अगर दुख है तो उनका भी उपयोग करो, दुख का एक ही उपयोग किया जा सकता है और वो यह है कि साक्षी बनो, और जितना साक्षी भाव बढ़ेगा उतना दुख क्षीण होता जाएगा,
इधर भीतर साक्षी जगा कि रोशनी हुई, दुख कटा अंधेरा कटा। जिस दिन तुम परम साक्षी हो जाओगे दृष्टा मात्र, उस दिन जीवन में कोई दुख नहीं, उस दिन जीवन परमात्मा है।
अपनी पुस्तक माय डायमंड डेज विद ओशो में माँ प्रेम शून्य इस एहसास के विषय में कहती हैं कि बुद्धत्व एक आभास है आकाश की भांति। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने ओशो के सानिध्य में बिताए अनमोल क्षणों को पिरोया है, ये कहकर हीरा पायो गाठ गठियायो। माँ शून्य लिखती हैं, मैं आज भी उन्हें इतना अनुभव करती हूं जितना तब करती थी जब वे शरीर में थे। जब वे जीवित थे उनके आसपास मैं जिस ऊर्जा का अनुभव करती थी वह वही शुद्ध ऊर्जा होगी जो अमर है, क्योंकि अब भी वैसा ही लगता है जबकि उनका शरीर नहीं है। एक बार उरुग्वे में जब वे बोल रहे थे मैंने अनुभव किया उनकी कुर्सी खाली थी। मैंने देखा कि कुर्सी खाली थी और उनके पीछे की दीवार के पार आकाश देख सकती थी। मैंने एक अद्भुत ऊर्जा को उनमें से गुजरते देखा जो बहुत शक्तिशाली थी और तीव्र गति से चलायमान थी। मैं भयभीत हो गई क्योंकि वे पूर्णतः भेद्य लग रहे थे। मैंने उन्हें इसके बारे में लिखा और बताया कि मैं बहुत घबरा गई थी। उन्होंने उत्तर दिया,
ओशो कहते हैं, तुम्हें एक संबुद्ध व्यक्ति की घटना को गहराई में जाकर देखना होगा। वह है भी और नहीं भी, दोनों एक साथ। वह है क्योंकि उसका शरीर है, वह नहीं है क्योंकि अब उसका कोई अहंकार नहीं है। वहां कोई नहीं है जो कह सके मैं हूं, और फिर पूरा ढांचा है और भीतर है विशुद्ध आकाश, और वह विशुद्ध आकाश तुम्हारी दिव्यता है, तुम्हारी भगवत्ता है। वह विशुद्ध आकाश वही है जो बाहर भी विशुद्ध आकाश है। आकाश केवल दिखाई देता है, वह है नहीं। यदि तुम आकाश की खोज में जाओगे, तुम इसे कहीं भी न पाओगे, वह केवल एक आभास है। ओशो कहते हैं, बुद्ध पुरुष आकाश की भांति एक आभास है, परंतु जब कभी तुम उसके साथ समस्वर हो जाते हो, तो कभी कभी तुम्हें लगता है कि वह है ही नहीं। तुम भयभीत हो सकते हो, घबरा सकते हो, और ऐसा ही हुआ होगा। तुम्हारा स्वर मेरे स्वर में मिल गया, तुम्हारे बावजूद कभी कभार तुम मेरे साथ समस्वर हो जाते हो सकता है कभी कभार तुम स्वयं को भूल जाओ और तुम्हारा स्वर मेरे स्वर में मिल जाए, क्योंकि यह मिलन तभी संभव है जब तुम अपने को भूल जाते हो, और उस मिलन में तुम पाते हो कि कुर्सी खाली है। यह झलक भले ही क्षणिक हो, परंतु तुमने वास्तव में ऐसा सत्य देख लिया जो पहले कभी नहीं देखा था। तुमने बांस की खोखली पोंगरी को और उसके भीतर से बह रहे संगीत के चमत्कार को देख लिया है।
मैं जब भी ओशो की ओर देखती, उनकी आंखों में एक खालीपन दिखाई देता, परंतु यह स्वीकार न कर पाती कि वे पूर्णतः किसी व्यक्तित्व व अहंकार से रहित हैं, क्योंकि मेरे पास यह समझने का कोई उपाय न था कि इसका क्या अर्थ है। उन्होंने कहा कि एक दिन हम अपने बुद्धत्व को उपलब्ध होंगे, क्योंकि ऐसा अवश्यंभावी है। उन्होंने कहा कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कब। मैं तुम्हें अपने होने का स्वाद दे रहा हूं और तुम्हें भी उसके लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि तुम उसे दूसरों को दे सको। यह सब तुम पर निर्भर करता है कि मेरे शब्द जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। जहां तक मेरा प्रश्न है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यहां हूं तो स्वयं को तुम पर उड़ेल रहा हूं, और मैं कृतार्थ हूं कि तुम ऐसा होने दे रहे हो। कल की चिंता कौन करता है? मेरे भीतर कोई भी नहीं जो भविष्य की चिंता करे। यदि अस्तित्व मुझे अपना वाहन बना सकता है, तो मैं आश्वस्त हो सकता हूं कि यह सहस्त्रों लोगों को अपना वाहन बना सकता है। तो मित्रों, बुद्धत्व हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मार्ग है ध्यान। ध्यान यानी होशपूर्ण होना, सजग होना, शरीर के प्रति, मन के प्रति और भावनाओं व अनुभूतियों के प्रति। साक्षी भाव तक हमें जाना है, और फिर यहां से बुद्धत्व की छलांग अस्तित्व पर निर्भर है। हमारा काम तो साक्षी तक है, आगे बुद्धत्व का प्रसाद बरसाना परमात्मा का अनुग्रह है। हमें तो बस प्रतीक्षा करनी है। ओशो के शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते रहेंगे तब तक जब तक बुद्ध न हो जाएं। हमारा प्रेम भरा नमस्कार और ओशो के आशीर्वाद हम सब पर।